आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे हर साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है, जो देश में सड़क हादसों से होने वाली मौतों की संख्या की 2/3 है और इस बीमारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीमारी से ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई प्रमुख लोग प्रभावित हुए हैं और कई जानी मानी हस्तियां इसके खिलाफ अभियान से जुड़ी हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर मामलों में इस बीमारी के कारणों का पता नहीं चल पाता है। मेरा नाम है शशि कुमार और हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मोटर न्यूरॉन डिजीज यानी MND। एक शोध में ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों में इसके अनेक क्लस्टर सामने आए हैं। इसके बाद एक राज्य ने दुनिया में पहली बार एक बड़ा कदम उठाया है। चाहे वे रैबिटोज टीम के प्रशंसक रहे हो या नहीं, गोल्ड कोस्ट के सीवस सुपर स्टेडियम में मौजूद लोग उस समय खड़े होकर तालियां बजाने लगे जब रैबिटोज के खिलाड़ी जय एरो अपने करियर के 99 मैच के लिए मैदान पर उतरे। उनके मोटर न्यूरॉन डिजीज से पीड़ित होने की जानकारी सामने आए 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि इस मुश्किल सफर में वे कभी अकेले न रहें, खासकर उस समय भी जब MND के कारण उनकी शारीरिक क्षमताएं क्षीण होने लगी। मोटर न्यूरॉन डिजीज से ऑस्ट्रेलिया में हर 1,00,000 लोगों में से लगभग 8 लोग प्रभावित होते हैं। इस बीमारी के मरीज धीरे धीरे बिना सहायता के चलने, बोलने और सांस लेने की क्षमता खो सकते हैं। इस बीमारी का पता चलने के 2 से 3 साल के बीच मरीज की मौत हो जाती है और अब तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और इससे भी चिंताजनक बात यह है कि इसके अधिकांश मामलों का कारण भी अज्ञात होता है।
90% of MND cases are sporadic, which means there's an environmental cause. So that's why we need the data, so we can drill down to what's causing. And of course, the rates are increasing every year.
यह कहना है हेलन डॉल्टन का, जो न्यू साउथ वेल्स में रिवरीना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली एक स्वतंत्र सांसद हैं। उनके क्षेत्र में MND के मामले राष्ट्रीय औसत से 7 गुना अधिक है। वे लंबे समय से इस संबंध की ओर इशारा कर रही हैं, और अब शोध से भी पता चलता है कि आप कहाँ रहते हैं इसका असर इस बात पर पड़ सकता है कि आपको MND होने की कितनी संभावना है। मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डोमिनिक रो इस बीमारी के विश्व स्तरीय विशेषज्ञ माने जाते हैं। वे अपने शोध के बारे में बताते हैं।
It would come as a shock to all Australians to know that if you live in rural or regional Australia, you are 40% more likely to die from motor neuron disease than if you live in the city. But even within the city, from our work that is ongoing, suggests that motor neuron disease is variable. Depending on what you do for a living, where you live, and what you do for recreation.
ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से सामने आ रहे शोध के नतीजे महत्वपूर्ण हैं और चिंताजनक भी। प्रोफेसर रो की टीम के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में MND से होने वाली कुल मौतों की संख्या पिछले 37 सालों में 3 गुना से अधिक बढ़ गई है। 1986 में यह संख्या 238 थी, जो 2023 में बढ़कर 781 हो गई। शोध में यह भी पाया गया है कि धातुओं, कीटनाशकों, सिर की चोटों और वायरल संक्रमण के कारण भी यह बीमारी हो सकती है, और इन्हीं निष्कर्षों के कारण 1 सितंबर 2026 से न्यू साउथ वेल्स में MND को एक नोटिफाइएबल डिजीज घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि बीमारी के मामलों का आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाएगा, उन्हें ट्रैक किया जाएगा और डेटा इकट्ठा करके उसका नक्शा तैयार किया जाएगा। प्रोफेसर रो इस समय 270 मरीजों का उपचार कर रहे हैं। उनमें से एक हैं रॉन हॉबडन, जिन्हें उनके परिचित हॉबो के नाम से बुलाते हैं।
When I first saw Hobbo 2.5 years ago, if I had a mechanistic therapy, I could say to him, it's okay, Hobbo, we got your back. I don't have that yet. But that's what this notification system will allow us to do, is to get to the cause and the mechanisms of sporadic motor neuron disease.
Hobbo सिडनी में हुई न्यू साउथ वेल्स सरकार की घोषणा में शामिल नहीं हो सके, इसलिए उनकी पत्नी एनी हॉबडन ने उनकी ओर से बात की.
We were gobsmacked to when Hobbo was diagnosed 3 years ago that this didn't exist. Why didn't we know? Why is MND occurring in places like the Murray? We moved from Gunnedah in northern regional New South Wales, and we made the hard choice to move here because we wanted the best possible care and we couldn't access services in Gunnedah. So this data registry is going to also help set up better services and infrastructure for people like us.
New South Wales ke swasthya mantri Ryan Park ka kehna hai ki यह रजिस्टर एक मजबूत डेटाबेस तैयार करेगा और बीमारी के कारणों को समझने के लिए जरूरी सुराग देगा.
And then people in the research space, like Professor Rowe, like the team down at Professor Ubrey's research lab in the University of Wollongong, will then be able to access that through ethics approval to be able to paint a better picture and get a better picture of what is happening, why it's happening, where it's happening and who it's happening to.
MND बीमारी सिर्फ न्यू साउथ वेल्स तक सीमित नहीं है, इसलिए हॉबडन परिवार उन लोगों में शामिल है जो पूरे ऑस्ट्रेलिया में मोटर न्यूरॉन डिजीज के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्टर की मांग कर रहे हैं.
And Hobbo and I really want to say, if New South Wales can do it, why can't the rest of Australia do it? MND doesn't stop at borders, so why should we?
मई 2026 में प्रकाशित मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के शोध पत्र में भी राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है. इसमें पाया गया है कि तस्मेनिया में रहने वाले लोगों की एमएनडी से मृत्यु होने की संभावना न्यू साउथ वेल्स के लोगों की तुलना में 40% अधिक है. साउथ ऑस्ट्रेलिया में देश में एमएनडी से होने वाली मौतों की दर दूसरी सबसे अधिक थी, लेकिन ऐसा क्यों है? इन सवालों के जवाब खोजने में शोध की अहम भूमिका है. जब से जय एरो ने सार्वजनिक रूप से अपने एमएनडी रोग की जानकारी साझा की है, तब से उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ अभियान के लिए $10,00,000 जुटाए हैं और वे एक और खेल जगत के दिग्गज दिवंगत एएफएल खिलाड़ी नील डेनहा के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. डेनहा की मई 2026 में मौत हुई, जिस दौरान एरो को अपनी बीमारी का पता चला था. इस वर्ष तक डेनहा के बिग फ्रिज अभियान ने उनकी संस्था फाइट एमएनडी के माध्यम से एमएनडी अनुसंधान के लिए $11.5 करोड़ से अधिक जुटा लिए थे. मृत्यु से पहले उनकी आवाज भले ही चली गई थी, लेकिन 2025 के ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर के रूप में उनका संकल्प उतना ही मजबूत था जितना 12 वर्ष पहले बीमारी का पता चलने के समय था.
A determination to fight for those who are currently affected and those who will face it after me.
एक ऐसा संकल्प जिसे आज बहुत से लोग साझा कर रहे हैं. कमील बियांची की SBS न्यूज की इस स्टोरी को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया शशि कुमार ने.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.